हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और अभी विषय चल रहा है भागवतम का आठवां स्कंद पांचवा अध्याय। विषय है देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना। और आज हम श्लोक संख्या 34 जो है वो पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम मंगलाचरण करते हैं, आप हमारे साथ साथ बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्चिके श्रृणवता स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणा कीर्तना यदियन्तस्त हि अभद्राणि विजनोति सुहृत्सताम्। ॐ अज्ञानस्य विरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सह गणरघुनाथान्वितं दंश जीवं साद्वैतं स अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धौ जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुभाषादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशिताधिने। सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां यो बलमन्दमायो ईशो न गानां प्रजना प्रजानां प्रसीदतां न स महाभिभूतिः। सो धन्यवाद। शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की शब्दार्थ। सोमं चंद्रमा मनः मन यस्य जिन भगवान का समामनन्ति वे कहते हैं देवौकसां उच्च लोक के निवासियों का यह जो बलम बल अंधः अन्न आयुः उम्र ईशः परमेश्वर न गानां वृक्षों का प्रजनः प्रजनन का स्रोत प्रजानां सारे जीवों का प्रसीदतां वे प्रसन्न हो ना हम पर सह वे भगवान महाविभूति सारे ऐश्वर्यों के हम स्तोत्र। धन्यवाद। अनुवाद सुनिए। सो चंद्रमा समस्त देवताओं के लिए अन्न बल तथा दीर्घायु का स्तोत्र है। वह सारी वनस्पतियों का स्वामी तथा सारे जीवों की उत्पत्ति का स्तोत्र भी है। जैसा कि विद्वानों ने कहा है, चंद्रमा भगवान का मन है। ऐसे समस्त ऐश्वर्यों के स्तोत्र भगवान हम पर प्रसन्न हो। चंद्रमा के बारे में तात्पर्य बहुत संक्षिप्त तात्पर्य ध्यान से सुनिए। सोम जो चंद्रमा का अधिष्ठाता देव है, अन्न का स्रोत है, अतएव वह दैवी प्राणियों देवताओं का भी शक्ति का स्रोत है। वह सारी वनस्पतियों की प्राण शक्ति है। दुर्भाग्यवश तथाकथित आधुनिक विज्ञानी चंद्रमा को पूरी तरह न समझ सकने के कारण उसे मरुस्थल से पूर्ण बताते हैं, यानी रेगिस्तान। क्योंकि चंद्रमा हमारी वनस्पतियों का स्रोत है, अतः वह मरुस्थल कैसे हो सकता है? चंद्रमा का प्रकाश चांदनी सारी वनस्पतियों की प्राण शक्ति है। अतएव संभवतः हम यह नहीं मान सकते कि चंद्रमा मरुस्थल है। जो चंद्रमा के विषय में कुछ प्रभुपाद ने यहां पर जिक्र किया है और कुछ इसमें जो कुछ शब्द थे जो मेरे को खासतौर पर महत्वपूर्ण लगे, इसके अंदर एकदम निकल के आए। वैसे भी शब्दार्थ जो है ये अपने आप में भागवतम के लिए, जैसे प्रभुपाद आप लोगों ने कई लोगों को जानकारी होगी इस बारे में, बहुत 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 मशहूर श्लोक है ये भागवतम का, तद्भाग विसर्ग जनता अग विप्लव। एंड उसमें आगे बताया जाता है कि हर शब्द जो है भागवतम का वो क्रांतिकारी है, यानी कि एवरी वर्ड इज रेवोल्यूशनरी। प्रोबेबली देयर फॉर देर इज वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग, बिकॉज एवरी वर्ड हैज गॉट मीनिंग, एवरी मीनिंग इज इंपॉर्टेंट। सारे जो शब्द हैं, शब्दों का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि प्रभुपाद ने इसको कार्यान्वित करके दिखाया। कई किताबें आपको अदरवाइज मिलती हैं, शास्त्र मिलते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, शब्दार्थ नहीं होते। शब्दार्थ हटा दिया जाए तो किताब की छपाई का मूल्य भी कम हो सकता है, बट शायद उसका असली मूल्य जो है एवरी वर्ड हैज गॉट इट्स मीनिंग। एंड प्रभुपाद ने उसको दिखाया कि हाउ दे आर मीनिंगफुल, एवरी वर्ड हैज गॉट इट्स वर्ड फॉर वर्ड। सो खैर, तो इसमें दो चार चीजें जो मुझे खास तौर पर लगी, जैसे यहां पर वैसे तो ये जो प्रसंग है अभी, ये भगवान विष्णु को जो है ये प्रार्थना कर रहे हैं सब लोग, ब्रह्मा जी जो है प्रार्थना लीड कर रहे हैं, ये अग्रगणीय है। इसके अंदर देवता सब जो है वो गए हैं, और देवता अभी आगे जाकर आप देखेंगे ये पहले हार गए हैं, अब प्रार्थना करेंगे, फिर भगवान उनको आगे बोलेंगे कि अभी थोड़ा ठहर जाओ, मौके का इंतजार करो। मगर फिलहाल जो है तो ये जो श्लोक है, इससे पहले के श्लोक जो अभी चल रहे हैं, ये देवताओं के द्वारा भगवान को प्रार्थना है। और प्रार्थना किस तरीके की है देखिए, प्रार्थना में ये सोमदेव यानी चंद्रमा का रोल बता रहे हैं भगवान को। अब भगवान को बताने की क्या जरूरत है, उनको तो पता ही है। भगवान ही जो है अंततः जो है वो डिप्यूट करते हैं, भगवान ही जो है उनको सबको लगाते हैं। ये जितने भी जैसे हमारे यहाँ सरकारी महकमे हैं वहां पर आईएएस की डिप्यूटेशन होती है, वैसे ही ये डिप्यूटेशन में देवता लोग जाते हैं, तो भगवान को मालूम है। मगर फिर भी यहां पर जो है ब्रह्मा जी जो है प्रार्थना के तहत जो है चंद्रमा का रोल जो है बता रहे हैं, और उस तुलना कर रहे हैं भगवान के मन के साथ, कि जो जैसे कि विद्वानों ने कहा चंद्रमा भगवान का मन है, तो इससे तो यही एक वजह है कि भगवान के सभी अंगों का जोड़ जो है वो भगवान से है। इस लिहाज से जो है ये प्रार्थना यहाँ पर है। जैसे पिछले दिन जो है जब मुकुंदर प्रभु आए थे उन्होंने पानी का जिक्र किया, और पानी का जो तात्पर्य बताया गया कि पानी को जो है भगवान का वीर्य बताया गया, जैसे सारी सृष्टि होती है इसीलिए। तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं, और इधर ये शब्द भी यहाँ पर आया है तात्पर्य में, पापा शुरू में ही बोल रहे हैं, चंद्रमा ज्योति छत देव है, अन्न का स्रोत है, वहां से अन्न आता है। अब आप से कई भक्त लोग यहाँ पर, चाहे वो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, कॉम्युनिकेशन से है, आईवाईएफ से है, कुछ आईजीएफ के बच्चे भी दिख रहे हैं, सभी लोग, ज्यादातर लोग जो है भक्त ऋष्य के से वाकिफ है, और भक्त ऋष्य में अक्सर जो है नामामृत एक होता है, और इस नामामृत के अंदर अक्सर जो है जिक्र होता है अन्ना भवंती भूतानि, अन्ना भवंती भूतानि, अन्ना भवंती भूतानि। जब भी जो है बारिश होगी तो अन्न होगा, और वो नामामृत है। पहले मुझे नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, यानी हरिनाम की व्याख्या हो रही है, और हरिनाम की व्याख्या में जो है मुख्य प्रसंग जो होता है वो अन्नाद भवंती भूतानि होता है, कि कैसे जो है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होगा और बारिश टपकेगी, बारिश टपकेगी तो अनाज उगेगा। अब इसका मेरा सवाल ये है, मेरा कई साल सवाल रहा इस बारे में, ऐसा नहीं हो सकता आपके भी सवाल रहता हो, और पक भी जाते हो आप लोग ये सुन सुन के, कि ये जब हरे कृष्ण महामंत्र हरे नाम का अमृत बता रहे हैं, तो इसमें जो है बादल से क्यों बरस रहा है, पानी टपक रहा है, अनाज उग रहा है, इसका हरे कृष्ण महामंत्र से क्या लेना देना। अच्छा ठीक है यार, कीर्तन करेंगे तो हो जाएगा, मगर यहाँ पवित्र नाम का अमृत, यहाँ पर क्या ये ज्यादा जरूरी नहीं है बताया जाए कि हरिनाम किस तरीके से जो है आपको गोलोक धन का प्रेम धन देता है, किस तरीके से आप हरे कृष्ण महामंत्र में जप में मन लगाए, हरे कृष्ण जपने की कला कैसे जो है उसको पक्की करी जाए। और अक्सर कई बार इसका डिस्क्रिप्शन भी किसी तरीके से जाता है, वो प्रसंग पढ़ लिया जाता है, उसके बाद जो बताया जाता है हरे कृष्ण महामंत्र जप कैसे करना, मगर इसका ताल्लुक क्या है। प्रभुपाद हरिनाम का की व्याख्या में, हरिनाम के गुणगान में सबसे ज्यादा अगर कोई श्लोक इस्तेमाल किया है जो मेरे नजरों के सामने आया है, वो ये अन्ना भवंती भूतानि है। क्या वजह है इसकी, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से अपने बारे में, जप के बारे में, जप का तो पर्सनल चीज है ना, तो इसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए कि कैसे अपना साधना इंप्रूव की जाए, क्या कह रहे हैं आप लोग, एक आध सर हिल रहे हैं। हरिनाम का अमृत जो है मेरे लिए है, मेरी माला के लिए है, मेरी जप की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, राइट। जय श्री राधा राधे रमन कृष्ण बलराम गुणनिताय जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ऐसा कितनों को लगता है कि अन्नाद भवंती भूतानि जो है इससे जो है ये बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है हरे कृष्ण महामंत्र के लिए, ओके स्पेसिफिक है, तो बताइए स्पेसिफिक क्या है उसके अंदर। Why अन्नाद भवंती भूतानि नामामृत,
ये कारण हो सकता है कि क्योंकि हमारे जो हमारा शरीर है वो हमारे साधन के लिए जरूरी है,
तो इसलिए इसके लिए जरूरी है,
इसलिए जो है वो, और शरीर के लिए वो अन जरूरी है,
ठीक है,
तो इसका एक कोरिलेशन है।
ठीक है, शुक्र है आपने कम से कम शरीर की जिक्र तो किया, क्योंकि यहाँ तो ज्यादातर जिक्र ये होता है कि हम शरीर नहीं है, तो भूल जाता है कि हम शरीर के अंदर हैं। शुक्रिया पीछे से भी बता सकते हैं। हाँ जी टेक टू मो,
यज्ञ की महत्वता बताई गई है कि आप स्पिरिचुअली तो छोड़ दीजिए, अगर आपको मटेरियली भी सस्टेन करना है
ओके,
तो आपको यज्ञ मटेरियली नेसेसिटीज हैप्पीनेस के लिए भी यज्ञ,
ठीक है, यज्ञ की महत्वता बताने के लिए है, और साथ ही साथ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपको चाहिए स्पिरिचुअली। जैसे एक बात नितिन हम लोग से बहुत पहले सुना था मैंने, कि ज्यादा आत्मा आत्मा करोगे तो आत्मा ही रह जाएगी फिर, ठीक है। हाँ जी माता जी, अन्न हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, खाना हमारे लिए जरूरी है, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, कोई भी विचार जो गलत नहीं, नहीं मगर मेरा ताल्लुक जो है वो जैसे वो इससे था ज्यादा कि इससे हरे कृष्ण महामंत्र का क्या लेना देना है सीधा सीधा,
क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र आज कलयुग में यज्ञ के समान है और ये हम ज्यादा लेंगे तो हमारा अन्न भी ज्यादा होगा फिर।
ओके ओके, आखिरी आखिरी प्रभु जी, अच्छा नाम प्रेम भोग बसाना पड़ेगा।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जब भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे देन देवी देवता प्रसन्न होंगे,
ठीक है देन फिर सभी लोग प्रसन्न होंगे, आगे श्लोक आएगा भी इसी चैप्टर में श्लोक है
देन फिर वो अन
गुड। अब नाम प्रभु आपने बात बात करा दी, नाम प्रभु लास्ट मेरा भी ठीक,
जैसा अन्न वैसा मन,
जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है। आज आज जो है आप आपकी चेतना दूषित क्यों है, क्योंकि आप जो भी खाते हैं सब कुछ मिलावटी है, तो मिलावटी खाने वाला आदमी मिलावटी होगा, वो खालिश कैसे होगा, दूध मिलावटी, खाना मिलावटी, हर चीज मिलावटी, ठीक बिल्कुल ठीक है। मैं इसके इसके मेरा इसमें जो है टेक जो मुझे समझ आया था काफी सोच, मैं भी नहीं कहूंगा सोच विचार के बाद, एक दिन समझ आया था, जब समझ आना होता कई बार, सो माई स्मॉल रियलाइजेशन, ये अन्नाद भवंती भूतानी जो प्रॉपर सबसे पहले कहते हैं इसका ताल्लुक इससे है कि अपने से अलावा भी किसी और के बारे में भी सोच लो जब जप कर रहे होते। हरे कृष्ण महामंत्र इज नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर फॉर एवरीबॉडी। सो जो अपने से बाहर सोच ही नहीं पा रहा है वो क्या जीवे दया और क्या वो वैष्णव सेवा, नामे रुचि, उसका क्या उसने करना क्या नामे रुचि से। माई नामे रुचि इज नॉट माई पर्सनल प्रॉपर्टी बट इट इज मेंट फॉर एवरीबॉडी। मेरी नामे रुचि जो है मेरी जागीर नहीं है, इसमें सबका हक है, सबके बारे में सोचना महाशय डिवोटीज का कैरेक्टरिस्टिक है, इससे यह डेवलप होने की जरूरत की जरूरी है की जरूरत करने की जरूरत कि क्या मैं हर किसी के बारे में सोच पाता हूं। अन्नाद भवंती भूतानी इज द ब्रॉडेस्ट अंडरस्टैंडिंग की हरे कृष्ण महामंत्र जो है सबके लिए है, सबके बेनिफिट के लिए, जो जब कर रहा है उसके लिए भी, जो नहीं है उसके लिए भी। जब आप भला करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से सिर्फ मेरा भला नहीं होता, और इस तरीके से सोचने वाले को बहुत कृपण कहा गया है, बहुत छोटी सोच है उसकी। मेरा हरे कृष्ण महामंत्र मेरे भलाई के लिए, इसलिए मेरा जप टेक्निक मेरे लिए है, देयरफॉर नामामृत जो है यह बताने के लिए होना चाहिए कि मेरा जप कैसे बेहतर हो, और उनके लिए क्या हो जिनके लिए जप नहीं है, जो जप नहीं करते, बाकी कौन है, वंशा नहीं है, उनको हक नहीं है। फिर मेरे जप करने से सारे दुनिया का भला क्यों हो, कैसे हो, कैसे होगा, अगर मैं जप कर रहा हूं मेरी मंशा यह है कि यह जप मेरे लिए है, तो जाहिर बात है आपके लिए है, फिर ठीक है। जब आपकी नियत ही नहीं है कि आपके जप करने से किसी और का भला हो, मेरा जप टेक्निक मेरे लिए है, मेरा नाम अमृत पवित्र नाम का अमृत मैं पीऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमिगॉड्स एंड गरुड़ एंड डीमंस, ये सबके लिए, मेरे जप करने से सबको फायदा होगा, और क्या मुझे क्या तकलीफ है अगर मेरे जप करने से सबको फायदा हो रहा है, मेरा कुछ जा रहा है। सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग जो मेरे को समझ आई है, बीइंग ब्रॉड माइंडेड व्हेन यू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, बड़े दिल वाला महाशय फुला सबके लिए, अनाथ भवती भूतानी मेरी नजरों में ये, इसलिए बार बार इस पे जोर दिया कि दूसरों के बारे में सोचना सीखो जब जब करते हो, यही संकीर्तन यज्ञ है ना, बाकी यज्ञ तो मेरे लिए है, अगर मैं विवाह यज्ञ करता हूं वो मेरे लिए, अंतिम संस्कार मेरे लिए, नामकरण मेरे लिए, जनेऊ मेरा, अभी किसी और का भी कुछ कर लो। हरे कृष्ण महामंत्र इज फॉर एवरीबॉडी, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है मुझे जो समझ आया था, शायद इसी वजह से इतना जिक्र होता है इसका कि मेरे जप करने से सबको फायदा होता है, और हरे कृष्ण महामंत्र हर किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। जहां पर जैसे दूसरा जो जैसे यहां पर भगवान के मन से और इसी का ताल्लुक जरूर समझ आ रहा है, अन्न अन्न जैसे आपने कहा अन्न मन, जैसा अन्न वैसा मन, तो मन क्या भगवत गीता में भगवान 17वें अध्याय के 16वें श्लोक के तात्पर्य में जो है भगवान प्रॉपर तात्पर्य में बता रहे हैं। एक्चुअली मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, माइंड शुड बी सो ट्रेन दैट इट कैन ऑलवेज थिंक ऑफ डूइंग गुड टू फॉर अदर्स। मन की मन को इस तरीके से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि ये हमेशा दूसरों के भलाई के बारे में सोच सके। आगे प्रभा उसी तात्पर्य में लिख रहे, माइंड शुड बी डिवाइड ऑफ डुप्लिसिटी एंड वन शुड थिंक ऑफ वेलफेयर ऑफ ऑल। जो है दोगलेपन से जो है मन को खाली कराएं और हर किसी के भले के बारे में सोचें। तो जब मैं जप करते वक्त यही सोच रहा हूं कि मेरा जपा टेक्निक क्यों अच्छा होगा, कैसे अच्छा होगा और उसका बेनिफिट सिर्फ मुझे मिलेगा और मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, तो इट इज नॉट ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। और यहां जो पूरी बात हो रही है तो मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में बात समझ, नहीं तो यहां भगवान सोमदेव को भगवान का मन बताया गया और यहां पर अन्न का स्रोत्र इससे बताने की क्या जरूरत है, इस श्लोक में तो नहीं है, क्योंकि उसका ताल्लुक इससे है एक ब्रॉड विचारधारा से। क्योंकि अक्सर हम मैंने देखा है ऐसा, मैं नहीं कह रहा कि हर कोई, मगर मेरे नजर में जो चीज कई बार आई है वो कुछ इसी तरीके से है कि क्योंकि ये भौतिक जगत जो है ये अच्छी जगह नहीं है तो इसीलिए जो है इसके लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब ये भौतिक जगत अच्छा नहीं है तो यहां कुछ भी अच्छा नहीं है, हेट द मटीरियल वर्ल्ड। तो जाहिरी बात है, तो क्या होता है जब हम दूसरों के बारे में सोचने का प्रशिक्षण नहीं लेते तो क्या होता है, तो डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट ये है फिर ये मटीरियलिस्ट है, कर्मी है, सेंस एंजॉयर है, इंद्रिय भोग करने वाले हैं, फिर और आ जाए ये औरतें हैं, ये माया है, दिन की डाकिनी है, रात की भागिनी है, देखिए कैसे कैटेगराइज हो रहा है, ठीक है, ये वो है क्या नाम है, एक ऐसा खड्डा है जिसमें मल त्यागा जाता है, अंधा कुआं है, पागलखाना है, जेल है, ठीक है ना। तो अब ऐसी जो जगह है तो इसका मतलब कि ये कोई, फिर इस जगह में रहने वाले लोग भी ऐसे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या होता है, फिर क्या जाएगा, इनके लिए हमदर्दी तो नहीं आएगी कम से कम, मेरा नजरिया ऐसा है। तो फिर इसका मतलब फिर क्या, इसका मतलब भौतिक जगत, भौतिक जगत में रहने वाले जीव निंदनीय है, स्केयर गेम, कैंसिल द बनेगा, क्योंकि मुझे निकलना है बाहर, मुझे अपना मालूम है और मेरे अलावा जो है या कुछ और दो चार लोग जो हमारे यहां पर हैं जिनको मैं भक्त कहता हूं, इन्हें मैं पहचान जाता हूं, और इनके अलावा जो भी है सारा कूड़ा करपट, इसी तरह है ना, जैसे हम बाहर जाते तो हम बात कैसे करते, उनका कर्मी नेम क्या है, यही डी मटीरियलिस्ट है काइंड ऑफ, तो इससे क्या मतलब, इससे अगर इसको थोड़ा सा आगे ले जाए, थोड़ा सा आगे, ज्यादा नहीं कहता थोड़ा सा आगे, तो इसके लिए आप काफिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन बिलीवर्स। इस तरीके से होता क्या है, मानसिक स्तर पर हमें पता भी नहीं लगता, वी स्टार्ट डीह्यूमनाइजिंग पीपल, फिर जायज है उनके साथ बुरा हो रहा था, फिर किसी के शोक सभा में जाते हैं, किसी के मैयत में जाते हैं, किसी का डेथ हुई है, हम बोलते हैं हाँ और क्या, एक्सीडेंट हुआ है उसका, एक्सीडेंट से डेथ हुआ है, हमारा कमेंट कैसा होता है, मैंने देर में सुना अपने कानों से सुना, हाँ कर्मों का खेल है इसलिए हुआ है, वो कर्मों का खेल है, वो जगह नहीं है बोलने का, वो क्यों है ऐसा, क्योंकि मैं कन्विंस्ड हूं इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, बात समझ आ रही है, ये बहुत डेंजरस है आगे जाके, फिर कुछ दिनों बाद उसका नतीजा क्या होता है, इंसान इंसान नहीं दिखाई देते। तो ये हमारी पॉलिसी नहीं है, भक्तों की पॉलिसी ये नहीं है, भक्तों की पॉलिसी जीवन दया पर बेस्ड है, अन्नाथ भक्ति बुतानी चाहिए, मैं बात कर रहा था, ये उसका एक्सटेंशन। हमारी पॉलिसी जो है वो बेसिकली जो जो कनिष्ठ अधिकारी का जो लेवल होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये है ना तत् जस्मात् मनुष्य जो कैसे सब प्राकृतो भवेत, इज दैट वर्स सेज, मतलब मैं बता देता हूं कि वो भगवान से तो उसको है लगाव है, मगर जो दूसरे भक्त हैं साथ में ये भी लिखाया, और जो दूसरे जीव हैं वो साथ में उसी श्लोक के अंदर, यानी जो भक्त नहीं भी है उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर पाता, इसी वजह से कनिष्ठ अधिकारी कहते दोनों है उसके अंदर उसी श्लोक के अंदर, वो सिर्फ सिर्फ अन्य भक्त नहीं है, व्हाट अबाउट दोस्त जो भक्त नहीं है उनके साथ कैसा सलूक किया जाए, उनके मुताबिक का सलूक जब नहीं कर पाता है वो, इसीलिए यानी कि उसकी प्रोग्रेस हो जाती है। सो यथा योग्य विचार, इस वजह से इसकी जरूरत है। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमारा प्रिंसिपल है यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, हर चीज का उपयोग करना, ये हमारा उपयोगिता जो है ये हमारा सिद्धांत है, इज आवर प्रिंसिपल। सो क्योंकि ये जरूरी है, नहीं तो इसका नतीजा क्या होगा, नफरत करना सीखेंगे, और वो नफरत जब वो जब हम प्रचार में निकल के आएगा वो ईर्षा के रूप में निकल के आता है, बाहर लोगों के बाद बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा बर्बाद कर, तुम्हारे जेब से थोड़ी देर के बाद बर्बाद कर रहे हैं, तुम भी कमा लो, बात समझ आ रही है, पैसा पैसा है ना, वो अच्छा है ना वो बुरा है, इस्तेमाल के ऊपर है, उसको रगेते रहो कि जी ये अमीर लोग होते हैं, अच्छा वो सेंस एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तुम्हें क्यों दुख हो रहा है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करनी तुम भी चले आओ, और अगर नहीं करनी है तुम अपने साथ ले आओ। अगर मैं किसी को बोलता हूं कि भाई तुम जो है तुम नीच हो, तुम पापी हो, तुम जहन्नुम जाओगे, तुम जो कर रहे हो ऐसा कर रहे हो, लोग मार रहे हो, तो यार से तुम कैसे किसी को कन्विंस करोगे, तो वो लैंग्वेज क्यों चेंज होती है, तब्दील होती है, वो इस तरीके से तब्दील, बहुत धीरे धीरे तब्दील होती है। मटीरियल वर्ल्ड जो है, पूरा जो भौतिक जगत है, ये भगवान ने हमें हमारे शुद्धिकरण के लिए दिया, उसको गाली देने के लिए नहीं दिया, उसका इस्तेमाल करने के लिए दिया। जितना जितना इस्तेमाल करता जाएगा, जिसको जितना इस्तेमाल करना आ जाएगा उसको भगवान उतना फैसिलिटी देंगे कि और इस्तेमाल करो मेरी राम। ये तेन तक तेन भुंजिता मां गृता कस से धनम, आपका जस्ट कोटा क्या है, आपका जस्ट कोटा उतना है जितना कोटा आप भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हो, कोटा बढ़ जाएगा। आपको इस्तेमाल नहीं करना आता तो आपका हक नहीं है कोटा कोटा जमा कुंडी का, सीधी बात। तो इस तरह से पूरा मामला, जैसे इंद्रियां, अब इंद्रियों के जो कार्य हैं, इंद्रियों के कार्य ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, इंद्रियों के कार्य, इंद्र क्या करेगा भाई, अब भाई आंखें हैं तो देखेंगी क्या करेंगी, उसको क्या करो, फोड़ लो उसे, इंद्र अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, आपको क्या तकलीफ हो रही है। तकलीफ वहां पर है जब आप इंद्रियों को, हम इंद्रियों के इस्तेमाल करें अगर ऐसे कामों में जो भगवान से जुड़ी हुई नहीं है, हाँ तब ये इंद्रियां हमारे तकलीफ का की वजह बनती है। इंद्रियां काम करती है तो तकलीफ नहीं होती किसी को, जब हम इस्तेमाल करते हैं इसको ऐसे कामों में जो भगवान से नहीं जुड़ी हुई है, तब वो हमारे तकलीफ का सबब बनती है। यही इंद्रियां हैं, ये जब हम उन कामों में इस्तेमाल कर लें जो भगवान से जुड़ी हुई हैं, हमारे मोक्ष अभावतम बोलने का जरिया बनती है। तो ये इस तरीके से यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, इसको इस्तेमाल करें, जैसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं हेट द सिन नॉट द सिनर, यानी वो जो कार्य है उस करने वाला नहीं। उसी तरीके से जब मटीरियल है, मैटर है, उसको यानी कि पदार्थ उसका इस्तेमाल जो दुरुपयोग कर रहा है वहां गड़बड़ी है, करना नहीं आता, बस खत्म, बस इतना, इतनी सी बात है बस। किसी को पदार्थ का सदुपयोग नहीं करना आता, दुरुपयोग कर रहा है क्योंकि नहीं आता करना, इतनी सी बात है बस, इतना ही डिफरेंस। उसको बस इतना सा घुमाना है कि वो सदुपयोग करना सीखे, खत्म, और क्या बह रहा है। ऐसे थोड़ी हम भक्त जो है वो उसे सारे दुनिया को दुश्मन बना लेते हैं। It's just this, just a difference of opinion. एक छोटा सा मतभेद है बस, कि आप इस पैसे इस्तेमाल करते हो, कुछ कैसे इस्तेमाल कर लो, खत्म। तो हम आमतौर पर देखा गया है कि आप कृष्णा को जैसे होता है ना कि हमें कहते हैं ना सर्वत्र है इष्ट देव स्फूर्ति, यानी कि हर जगह पे कृष्णा को देखने वाला भक्त हर जगह कृष्णा को देखता है। तो इसका मतलब क्या है कि खंभे में देखता है, इस पे देखता है, ये बहुत सतही अंडरस्टैंडिंग है। भक्त हर जगह देखता है, फैन में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, क्या दिखता है? जब उसको भक्त को दिखाई देता होगा तो उसमें क्या दिखाई देता होगा? चार हाथ विष्णु का पोस्टर चिपका हुआ दिखता होगा फैन के ऊपर, घूमते फैन में, घूमते हुए फैन में सीधा भगवान का चिपका हुआ विष्णु का पोस्टर दिखता होगा, नहीं घूमता होगा। तो सोचो तो सही यार, दिमाग को उनका अकल को हाथ मारो, कभी सोचा है कि इस चीज पर? जब होता है ना हर जगह भगवान दिखाई देते हैं, किधर दिखाई देते हैं? जब खंभे में भगवान दिखाई देते हैं, कोई फाड़ के निकला है ना, इसका क्या मतलब है हर जगह भगवान दिखाई देते हैं? तो सतही बात है ना, लोगों को आपस में बैठ के बेवकूफ बनाने का, आप मुझे बेवकूफ बना रहे, मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं। हर जगह भगवान देखने का मतलब जो मुझे अभी तक समझ आया वो ये है कि जिस चीज को आप वैल्यू करते हो उसमें आप भगवान को देख सकते हो, जिस चीज की आप कदर करते हो यानी कि उस चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हो, लिहाजा उसमें आपको भगवान दिखाई देते हो। जिस चीज की वैल्यू या कदर आपको नहीं आपने नहीं जानी है, आपको नहीं मालूम है, उसमें आप भगवान को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उसको इस्तेमाल भगवान की राह में नहीं कर सकते। भगवान और भगवान माया का मतलब क्या है? वही शक्ति है, भगवान से अलग कर लो, भगवान को अलग कर लो उससे, वही शक्ति है, भगवान को जोड़ लो उसमें, पूरी बात घूम गई। ये है, अब मान लो कुछ भी, ये ग्लास है या ये टेबल है, अब ये भगवान से, ये भगवान के लिए आप इस्तेमाल करना आपको आता है, आप भगवान इसमें देख रहे हो। भगवान को देखने का क्या मतलब है? जब कोई आईएसबीटी में जब आप जाते हो, वहां जब बस वाले बिठा रहे होते, आ जाओ जाओ चंडीगढ़ तो जा रही है, आ जाओ जाओ चंडीगढ़ तो जा रही है, इसका मतलब क्या है? वो आपका रिश्तेदार है, वो आपको बुला रहा है, उसको भाई 150 रुपए दिखाई दे रहे हैं आपके अंदर, पर उसी आईएसबीटी के बाहर जब वो जो लोग जा रहे हैं वो भी हार्ड मास हमारे जैसे ही है ना, दो आंख नाक, तो भगवान ने तो पूरा इंसाफ किया, उसको उसको 150 रुपए नहीं दिखाई दे रहे, लिहाजा उनको नहीं बुलाता। That's why he doesn't value those people. He doesn't see money in him. He values these people, he has got money in him. आप इसको वैल्यू करते हैं, इसी कृष्ण है। यू आर डोंट वैल्यू दिस, यू डोंट सी कृष्ण है। सिंपल। तो कुछ चीजें हो सकती है शुरुआती तौर पर, हम हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना नहीं आता, तो जहां हमें नहीं लगाना आता वी कैनॉट वैल्यू इट। तो इसका तरीका क्या है? सीख ले। एक्सपर्ट डिवोटी का क्या मतलब हो? तो उसको हर जगह कृष्ण क्यों दिखाई देते? वो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना सीख गया। अब वो मां के पेट से नहीं सीख के आया है, यही सीखा है भक्तों के बीच में, यही ट्रेनिंग उसने हासिल करी है। अच्छा जी, ये कैसे लगता है भगवान की सेवा में? अच्छा जी, इसका क्या उपयोग है? अच्छा, ये इसका क्या करना होता है? ये लग सकता है भगवान की सेवा? हाँ, लग सकता है। स्टार्ट सीइंग कृष्ण इन इट। और जो जो चीज में वो भगवान भगवान को उस भगवान को नहीं देख पाता है क्योंकि लगाना नहीं आता, वो उसके लिए क्या है? दैट इज माया। ये तरीके से सो जो जितना भक्त एक्सपर्ट होता जाता है उसके लिए माया का दायरा उतना छोटा होता चला जाता है, क्योंकि ज्यादा चीजें उसको जो है वो भगवान की सेवा में लगाने आ गई तो वो माया के लिए वो छोड़ता नहीं। या उन चीजों को माया बनने नहीं देता, वो चीज चीज है, कोई पंखा है, इसमें क्या माया किसी दिखाई दे रही है, इसमें क्या माया दिखाई दे रही है, इसमें त्रिशूल दिखाई दे रहा है, इसमें दस हाथ दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर, या चार हाथ दिखाई दे रहे हैं विष्णु के, मुझे बताओ। अब जब भाई इसको आपने लगा लिया, इसके नीचे बैठ के जो है आप हराम कमा रहे हो चला के, और इसका बिल भी जो भरा वो हराम के पैसे से भरा जा रहा है, तो ये माया है। यही पंखा जो है आप कर रहे हो, हलाल की कमाई है, भगवान का भक्त हो, ये कृष्ण है, इतनी सी बात है बस। ये कृष्णा इस तरह से नहीं है, ये अब ये जैसे होता है ना मॉर्फिंग नहीं होती कंप्यूटर में, वर्चुअल रियलिटी में ये मॉर्फ हो गया, त्रिभंग कृष्णा बन जाएगा एडवर्टाइजमेंट में जैसे होता है, इस तरह नहीं है मामला। ये पंखा ही रहेगा, कृष्ण की राह में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसमें आप कृष्णा देख सकते हो। ये है कॉन्सेप्ट इसका, वैल्यूइंग दिस एंड एनर्जी प्लस एनर्जी माइनस कृष्णा। जैसे यहां पर ऐसे तो मेरा मेन इशू तो यही था, बट चलते चलते कुछ एक चीज जैसे यहां पर प्रभुपाद ने चूंकि कमेंट किया है इसमें कि चंद्रमा जो है वो ये लोग कहते हैं कि मरुस्थल है यानी रेगिस्तान है चांद, तो चलो मैं इस चक्र में पड़े बगैर कि चांद में इंसान गया है नहीं गया है, इस चक्र में पड़े बगैर मैं एक बात जो मुझे समझ आई है, और वैसे भी देखा जाए तो हिस्ट्री इसी तरीके की है, जब वेस्ट से क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था और वो निकला था 1492, वो पहुंच गया जहां पे पहुंचा बोला मैं हिंदुस्तान पहुंच गया, उसने बेवकूफ बना के रखा पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को, कई सौ साल बाद में पता चला हिंदुस्तान ही है, वो अमेरिका है, वहां के लोगों का नाम भी डाल दिया रेड इंडियन, वो अमेरिकी थे, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से जमीन में है ना, आपके यहीं पे 10,000 किलोमीटर की दूरी पे इंसान को पूरे समाज को सैकड़ों सालों तक बेवकूफ बना के रखा जा सकता है, तो फिर चांद में भी पहुंचा जा सकता है और बहुत कुछ कहा जा सकता है, ठीक है ना। बाकी समझदार को इशारा काफी है बाकी, मगर मैं बात ये नहीं करता कि गए नहीं गए, मैं चक्र में पड़े बगैर मैं आपसे एक और बात जो मेरे नजदीक जो है जो जरूरी है वो ये कि मान लो हम पहुंच भी गए हैं वहां, तो उसके बाद भी जो है कौन सा कारनामा सर अंजाम देंगे, वो उसकी जमीनें प्लॉटिंग करके बेच लेंगे, रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर लेंगे, पानी गंदा कर लेंगे, पोल्यूट कर लेंगे, जंगल बेच खाएंगे, वहां पर दर्जनों एयरपोर्ट बना लेंगे जिसका इस्तेमाल नहीं होता, और क्या कारनामा हम करेंगे, इस तरीके कारनामे करेंगे जो जो अपना घर 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 बर्बाद किया तो दूसरे का क्या करेंगे, आप सोचो, फिर कॉलोनी बना लेंगे उसको अपनी और क्या कर लेंगे। तो इसी तरीके से काम जो इंसान की फितरत है, तो इसलिए गया है नहीं गया है तो मेरे लिए तो मेरे नजदीक तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी रहा नहीं, जब तक मैं अगर इंसान की फितरत नहीं बदलती है तो उसका जाना रहना कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, चाहे वो चांद पहुंच जाए या मंगल पहुंच जाए, जिधर भी पहुंच जाए पहुंच जाए, पहुंचते रहे, मुझे क्या करना है उनसे। मुझे तो यही बात समझ आई है। तो मैं वैसे भी मैं अब जो मैं कह रहा हूं जो मेरी समझ है मैं अपने समझ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं, आपकी नहीं ले सकता, आप मेरी बात से क्या समझते हैं इसकी मैं जिम्मेदारी ले सकता, मैं मैंने क्या कहा है इसकी जिम्मेदारी कबूल कर सकता हूं। एनीवे मगर जो जो बात हम वापस अगर हम चले इस पे कि चीजों को सही नजरिए में देखना है ना, तो ये सतोगुण का पहला जो है ये कसौटी है, बैलेंस मेरे नजदीक जो है दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ हैविंग समबडी हैविंग मोर गुडनेस। तो वो चीजों के दोनों पहलू देख सकता है, सिर्फ एक पहलू नहीं, हर क्योंकि दुनिया जो है ये ड्यूअल है ना, क्योंकि दुनिया है मैटर है, मैटर का मतलब ही वो ड्यूअल होगा, मैटर सिंगुलर नहीं एब्सोल्यूट नहीं, मैटर रिलेटिव है, तो वो ड्यूअल होगा, इसके कई पहलू होंगे, कम से कम दो पहलू होंगे। तो आप जितने पहलू आप देख सकते हैं उतना आप बैलेंस्ड रह सकते हो। एब्सोल्यूट में अच्छा है, एब्सोल्यूट इज लाइक एक चीज है, ऑफकोर्स अनेकता में एकता है उसके अंदर भी, बिकॉज दैट्स इनकंसीवेबल, अचिंत भेदाभेद तत्व है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब एक नहीं है. एब्सोल्यूट का मतलब है अनेकता में एकता और एकता में अनेकता. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अचिंत्य भेदाभेद तत्व. मगर दुनिया में कि हर चीज के जो है कम से कम दो पहलू होते, तो जो दोनों पहलुओं को देख सके इकट्ठे तो वो बैलेंस मेंटेन कर सकता है. इस आदमी के सबसे अच्छे चांस हैं सबसे आसानी से और सबसे तेजी से ये सतोगुण पर पहुंच सकते हैं. कई बार इस सवाल भी उठता है कि सतोगुण पर कैसे पहुंचा जाए. तो ये जो जो दोनों पहलू देख सकते हैं वो सबसे आसानी से पहुंच सकते हैं. बिकॉज उसको चीजों की सही जस्ट लाइक एज कृष्ण सेज ही सीज द थिंग्स एज दे आर. यह पश्यति स पश्यति, जो उसे देखता है ठीक से और भगवान को जानने के वजह से यह मुमकिन हो पाता है. भगवान को हटा के जब आप, यानी कि भगवान को हटाने का क्या मतलब है, अब जैसे वही जो बात हो रही थी कि इससे मैंने भगवान को, मैं इससे भगवान से हटा कैसे सकता हूं या भगवान से चिपका कैसे सकता हूं, वही जो बात साइंस की बात हो रही थी. That's all. ये भगवान की ए एनर्जी है, न्यूट्रल है, इसको भगवान के लिए इस्तेमाल कर लीजिए ये इंटरनल एनर्जी है, इसको भगवान के लिए इस्तेमाल ना करें तो ये एक्सटर्नल एनर्जी की तरह काम करेगी. बस जैसे जीव है, जीव को क्यों बोला जाता है मार्जिनल एनर्जी? मार्जिनल एनर्जी का क्या मतलब है? एनर्जी एक्सटर्नल होती है इंटरनल होती है? मार्जिनल एनर्जी का क्या मतलब है? अगर तो जीव कंसिस्टेंटली मार्जिनल एनर्जी है तो मार्जिनल एनर्जी रहेगी हमेशा? नहीं, मार्जिनल का मतलब ही यही है, एनर्जी है वो. अगर भगवान के नाम इस्तेमाल हो गई तो इंटरनल एनर्जी की सेवा कर लेगा, न हो पाई एक्सटर्नल एनर्जी के चंगल में आ जाएगा. इसी तरीके से बाकी सारी चीजें सब यही है. क्योंकि अक्सर जो है इस चीज, इसलिए इसमें दिमाग का इस्तेमाल करें, दोनों का, दिल दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना जरूरी है. अक्सर यूं ही क्या होता, नहीं तो कोई मर्द के लिए औरत है, औरत के लिए मर्द है, उसको उसको मोहब्बत करनी हो, प्यार करना हो, उस टाइम तो दिमाग इस्तेमाल नहीं करते. भगवान के बारे में पूछो, इनसे भगवान से प्यार करने दिमाग याद आ जाता, ठीक है, यानी कि दिमाग का दुरुपयोग करने के लिए. अगर पूछो कि भाई ये लड़की क्यों पसंद है, बहुत दिल का मामला है, तो उस टाइम पे है ना, उस टाइम पे तुम्हें हमें गुरदास मान याद आ जाता. जब भगवान को है ये दिल का ना, दिल का ये दिमाग हो भाई, बद दिमाग, दिमाग का गलत इस्तेमाल. सो भगवान की राम, दिमाग दिमाग है, भगवान की राम इस्तेमाल कर लेंगे तो बुद्धि हो कहलाएगा, भगवान से हटने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कुबुद्धि कहलाएगी. सेम यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल. हम यहीं पे, टाइम तो हो गया, यहीं पे विराम देंगे. किसी का कोई एक आध सवाल है, कोई कमेंट्स हैं, कोई गलती निकालना चाहे, जूते मारना चाहे, मैं यहीं बैठा हूं. अच्छा, प्रभु जी का सवाल है. जी जी, माइक्रोफोन इधर घूम रहा था, कोई पीछे चला गया. अच्छा जी, कहिए.
Hare Krishna Guruji. Prabhuji, in the end you told about any object can become like a marginal energy if it is being used in service of Krishna or in the service of...
Not Krishna. Marginal energy. It's energy. It's neutral in that sense of the term. Energy is just energy. You use it for Krishna, it becomes internal. You use it for... not don't use it for Krishna, so it becomes external. That's all.
And one more thing, seeing Lord everywhere, so in Bhagavad Gita also there is one perspective given that seeing the active principle, like in the sun, the light is Krishna.
That's the active principle. That's the active principle. What is the active principle?
So there can't, usme, wahan pe bhi do perspective honge ki seeing it like a maya or like Krishna. If somebody is seeing the sunlight, to wahan pe bhi do perspective kya honge?
क्यों नहीं, सारी दुनिया सनलाइट में भगवान देखती है, सारी दुनिया भगवान में सोलर एनर्जी देख लेती है, उसके बाद उससे कैसे टीवी चलेगा, उसके इंटरनेट पर पॉर्नोग्राफी कैसे चलेगी वो समझ आ जाती है उसे, है ना. जहां पे लाइट चली जाती है, गांव है, वहां पर खाने को रोटी नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, वहां भी लगा हुआ है, ये समझ आ गई है उसे, यूजिंग द इंटेलिजेंस फॉर कैसे इस्तेमाल करते.
थैंक यू फॉर द लेक्चर. हाउ टू लर्न एवरीथिंग दैट कैन बी एंगेज इन कृष्ण सर्विस.
लर्न फ्रॉम डिवोटीज हु डू दैट. दैट्स व्हाई वी नीड वैराइड एक्सपीरियंस. सर्व डिफरेंट डिवोटीज हु यूज कृष्णा एनर्जीज, डिफरेंट एनर्जीज ऑफ कृष्ण. कुछ डिवोटीज भगवान के अलग एनर्जीज, अलग एनर्जीज को एक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अलग एनर्जीज को इस्तेमाल करते हैं. वाई नॉट, जो किचन में इस्तेमाल करते हैं भगवान की एनर्जी, ही यूजेस द एनर्जी इन अ डिफरेंट वे दैट द पर्सन हु यूजेस फॉर व्हेन ही गोज आउट एंड कलेक्ट्स मनी फॉर कृष्णा. जब कोई कलेक्शन के लिए बाहर जाता है भगवान के लिए, तो वो व्हाट इज दैट एक्टिविटी? वैश्य एक्टिविटी, राइट? रॉन्ग. दैट्स ब्राह्मणिकल एक्टिविटी. कलेक्टर्स आर नॉट वैश्यस, कलेक्टर्स आर ब्राह्मणस. दे गो एंड बेग. Vaishya do not beg, he does business. जब devotees बाहर जाते हैं, अगर वो भगवान के लिए इकट्ठा चंदा इकट्ठा करने जाते हैं, तो वो भीख मांगने जाते हैं. ब्राह्मण कैन बेग, क्षत्रिय कैन टैक्स, वैश्य कैन डू बिजनेस, एंड शूद्र कैन सर्व, ही कैन अर्न. दिस इज हाउ इट इज. पैसा वही है, चारों के पास वही गांधी आते हैं, तरीका और है. व्हेन द ब्राह्मण गोज ही बेग्स. नॉट ड्यूरिंग जापा, इट्स नॉट ड्यूरिंग जापा यू थिंक. नो, आई दैट्स नॉट व्हाट एग्जैक्टली आई मेंट, नेदर आई सेड दैट. इट्स लाइक जब आप जप करते हैं, वी थिंक दैट इट्स फॉर अस. मेरा जपा मेरे लिए, मेरा बेनिफिट कैसे होगा, मैं कैसे भगवत धाम जाऊंगा. दैट इज माय ऑब्जेक्टिव. इज दैट ऑब्जेक्टिव ब्रॉड इनफ? दैट्स माय क्वेश्चन. प्रतिष्ठार करे निर्जन घर कव हरिनाम केवल कैठव भक्ति भक्ति सदा सरस्वती ठाकुर दुष्ट मन तुम किशोर वैष्णव. व्हाट काइंड ऑफ वैष्णव यू आर? यू सिटिंग ओवर हियर चैंटिंग फॉर योर सेल्फ. I am chanting for myself because I am given a sadhana. It's a different thing that I am chanting. I'll go back home, back to Godhead. Forget about everybody else. It's a different thing. That I am chanting because it is my duty to chant, because I have promised to my spiritual master. So I am executing a responsibility. Fine. It's achhi kya baat ho sakti hai? That is, you are doing, you are, aap guru ki seva kar rahe ho. बट यू चैंटिंग और थिंकिंग दिस चैंटिंग मैं भगवत धाम जाऊंगा, चैंटिंग में अच्छे से करूंगा, इसकी टेक्निक क्या है. वट अबाउट द अदर्स? वाई यू आर थिंकिंग मैं भगवत धाम जाऊंगा? आप चैंटिंग कर रहे हो क्योंकि आपको अपने स्पिरिचुअल मास्टर ने दिया. यू जस्ट कंसर्न योरसेल्फ विद दैट. आप भगवत धाम जाओगे नहीं जाओगे, दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू डू योर पार्ट, ही विल डू हिज पार्ट. दैट्स दीक्षा, दैट्स द कॉन्ट्रैक्ट. I chant my rounds, you take me back, come back to Godhead. I chant my rounds, therefore I go back, come back to Godhead. It's not you, it's not what you are chant for. Samajh rahe ho? Kaise turn around hota hai? I chant to please my spiritual master, not to go back, come back to Godhead. That's his edit. But my chanting, it benefits everybody. That is my mood of chanting. तो क्योंकि वो कभी जैन में नहीं होते, इसलिए अन्नाथ भवंति भूतानि, फिर दर्द होगा सुन के. क्यों दिमाग खराब कर रखा है हमेशा? अन्नाथ भवंति भूतानि, ये हरि नाम का अमृत, पवित्र नाम का अमृत, फिर अन्नाथ भवंति भूतानि, ये खाने से ऊपर, अन्नमय चेतना से ऊपर ही नहीं उठ रहे कि आगे कुछ करें. उस परपट का अन्नमय चेतना नहीं है, शायद हमारा हो सकता है पढ़ते वक्त. व्हाट्स दैट अन्नमय प्राणमय चेतना? इट्स लाइक दैट, जस्ट द बॉडी एंड द माइंड, प्राणमय प्लेटफॉर्म. ठीक है, चले. सब बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, जगदीश प्रभुपाद की जय, भक्तवृंद की जय. गोस्वामी आत्मानंदी.